ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतौर पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के दसवें अध्याय का 15 नंबर का गद्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सचापि पांडवेय सिंधु सौवीर पतिस्तत्व जिज्ञासायां सम्यक श्रद्धयाधिकृताधिकारः तद्हृदय ग्रंथ विमोचनम् द्विचवच आश्रुत्यः बहुज्योग ग्रंथ सम्मतम् त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलमुपसृतः क्षमापयन् विगत निपदेव स्मय उवाच। सचापि पांडवेय सिंधु सौवीरपति तत्वजिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकारः तद्हृदय ग्रंथ विमोचनम् द्विजवच आश्रुत्य बहुजोग ग्रंथ सम्मतम् त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलम् उपसृतः क्षमापयन् विगत नृपदेव स्मय उवाच। सह वह महाराज रहुगण च भी अपि निसंदेह पांडवेय हे पांडु वंश के श्रेष्ठ महाराज परीक्षित सिंधु सौवीर पति सिंधु तथा सौबीर नामक राज्यों का राजा तत्व जिज्ञासायाम परम सत्य के संबंध में जानने की इच्छा के बारे में सम्यक श्रद्धया इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाली श्रद्धा से अधिकृत अधिकार समुचित योग्यता प्राप्त तत् उस हृदय ग्रंथि हृदय के भीतर झूठे विचारों की गांठ मोचनम खोलने वाले द्विजवच ब्राह्मण जड भरत के शब्द आश्रुत्य सुनकर बहुजोग ग्रंथ सम्मतम समस्त जोग तथा उनके ग्रंथों द्वारा सम्मत समर्थित त्वरया शीघ्रता पूर्वक अवरूह्य उतर कर पालकी से सिरसा अपने सिर से पादमूलम चरण कमल पर उपस्थित दंड प्रणाम करके क्षमापयन अपने अपराध के लिए क्षमा प्राप्त करके विगत नृपदेवस्मय राजा होने का झूठा अभिमान तथा पूज्य भाव त्याग कर उवाच कहा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ पांडुवंशी महाराज परीक्षित, सिंधु तथा सौवीर के राजा रहुगण की परम सत्य की चर्चाओं में श्रद्धा थी। इस प्रकार सुयोग्य होने के कारण उसने जड भरत से वह दार्शनिक उपदेश सुना जिसकी संस्तुति सभी योग साधना के ग्रंथ करते हैं और जिससे हृदय में पड़ी गांठ ढीली पड़ती है। इस प्रकार उसका राजमद नष्ट हो गया। वह तुरंत पालकी से नीचे उतर आया और जड़ भरत के चरण कमलों में अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दंडवत गिर गया, जिससे वह इस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कहे गए अपमानपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। तब उसने इस प्रकार प्रार्थना की। तात्पर्य, भगवद्गीता 4:2 में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स्वकाल नेह महता योगो नष्ट परम तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से जाना, किंतु कालक्रम से वह परंपरा टूट गई जिससे यह विज्ञान लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। गुरु परंपरा से राजा भी ऋषियों के तुल्य थे। पूर्व काल में राजर्षि जीवन दर्शन समझते थे और नागरिकों को उसी स्तर तक ऊपर उठने की शिक्षा प्रदान करना जानते थे, अर्थात वे नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाना चाहते थे। जब महाराज दशरथ अयोध्या में राज कर रहे थे तो एक बार महर्षि विश्वामित्र असुरों के वध के लिए उनसे रामचंद्र तथा लक्ष्मण को जंगल में ले जाने के लिए मांगने आए। तब विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में आए थे तो उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा, अहिष्टम यत्तत् पुनर्जन्म जयाय, अर्थात जन्म तथा मृत्यु के चक्र को जीतने के उनके प्रयत्न ठीक से चल रहे हैं ना? वैदिक सभ्यता की संपूर्ण प्रक्रिया इस तथ्य पर आधारित है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्र को किस प्रकार जीता जा सकता है। महाराज रहुगण को भी जीवन का लक्ष्य ज्ञात था। अतः जब जटभरत ने उनके समक्ष जीवन दर्शन प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसकी तत्काल प्रशंसा की। वैदिक समाज की यही आधारशिला है। विद्वान ब्राह्मण संत तथा ऋषि वैदिक प्रयोजन से परिचित थे, अतः वे राजाओं को आम जन समूह के कल्याण के लिए उपदेश देते थे। इस प्रकार उनके सहयोग से जन समूह को लाभ पहुंचता था, इसलिए प्रत्येक वस्तु में सफलता प्राप्त होती थी। महाराज रहुगण को मनुष्य जीवन की महत्ता पूर्ण रूप से ज्ञात थी, अतः उन्हें अपने द्वारा जड़ भरत को कहे गए अपशब्दों का खेद था। वे तुरंत पालकी से उतरकर जड़ भरत के पांवों पर गिर पड़े, क्षमा मांगी और जीवन के महत्व के विषय में, जिसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, अधिक जानने की प्रार्थना की। इस समय के उच्च राज्याधिकारी जीवन मूल्यों के विषय में सर्वथा अनजान हैं। अतः जब साधु संत लोग वैदिक ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं तो वे उनको नमस्कार तक नहीं करते और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन राज शासन स्वर्ग तुल्य था और वर्तमान शासन नरक तुल्य है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग वार्ता सुन रहे हैं दो महान व्यक्तियों का। पालकी में बैठ करके राजा जा रहे हैं और एक ब्राह्मण अवधूत वेश में है। आप कथा जानते हैं, जब उस ब्राह्मण को पालकी में लगा दिया गया, यद्यपि जटभरत जी को पालकी में लगा दिया गया तो पालकी ढोने लगे, लेकिन फिर भी उनका जो स्वभाव था कि जीवों की रक्षा करनी है, तो इससे वे विचलित नहीं हुए। वे अपने स्वभाव में थे, पैर रख रहे थे वो इसु मात्रम, एक धनुष दृष्टि आगे रखते थे। एक धनुष चार हाथ को कहा जाता है, बहुत दूर नहीं देखते थे। उसका कारण यह था कि ध्यान रखते थे कि हमारे पांव रखने से किसी भी जीव जंतु की हिंसा न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे। ये कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे तो अब तेज नहीं चल पाते थे। दूसरे जो कहार थे तो तेजी से चल रहे थे, अब ये थोड़े दूर पर पैर रखते थे और थोड़ा सा जो पालकी का मूवमेंट था तो गड़बड़ होने लगा। राजा कहे साध्वति क्रमतः, तुम लोग ठीक से ढोवो। तो दूसरे जो कहार थे तो ठीक से ढो ही रहे थे, वे तो डर गए कि राजा कुछ एक्शन लेगा, मार सकता है, दंडित कर सकता है। तो कहने लगे कि हम लोग तो ठीक से ही ढो रहे हैं, ये जो नया आया है वो ये हम लोगों के साथ नहीं चल रहा है। यद्यपि ये थका नहीं है, अभी तुरंत इसको लगाया गया है और इसके चलते चाल बिगड़ रही है, पालकी का दोलन बिगड़ रहा है। और राजा के मन में विचार आया कि एक व्यक्ति के गड़बड़ी से सब गड़बड़ी हो रहा है, तो इसको ठीक करना चाहिए। उसको उस पर आक्षेप वचन किए। यद्यपि राजा सुधारने के दृष्टि से ही ऐसा किए, उनके मन में यही विचार था कि अब एक व्यक्ति को ठीक नहीं करेंगे तो बाकी तीन हैं वे भी बिगड़ सकते हैं, और ठीक करने के उद्देश्य से ही बोले। लेकिन जो उनका निसर्ग था, स्वभाव था, तो वह उन पर अधिकार कर दिया। वे राजा थे, क्षत्रिय थे, और स्वभाव बस थोड़ा सा क्रोध आ गया। स्वभाव बलात्कृत है, वो स्वभाव उन पर कब्जा कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और जटभरत ने रहुगण के जीवन में जो घटना घटी है उस पर विचार करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बलात्कृत, वे निसर्ग जबरदस्ती उनसे बुलवा दिया, उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। यह समस्या रहुगण की ही नहीं है, बहुत सारे भक्त हैं जो प्रश्न करते रहते हैं, प्रभु जी क्या करें, हमको क्रोध बहुत आ जाता है, हम चाहते हैं कि शांति से रहें, लेकिन हमारा ऐसा स्वभाव है क्रोध आ जाता है। वो वास्तव में शौर्य इसी को कहा गया है कि व्यक्ति अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ले, सारी दिशाओं में दिग्विजय कर ले, तो यह कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी है कि अपने स्वभाव पर विजय कर लिया जाए। भगवान यही परिभाषा दिया है, स्वभाव विजय शौर्यम। बहादुरी इसी में है कि अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखा जाए। लेकिन रहुगण के विषय में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि स्वभाव ही उन पर अधिकार कर दिया और उनको कुछ क्रोध आ गया और वे बहुत आक्षेप करने लगे। आक्षेप आप लोग सुन चुके हैं, तुम अकेले ढो रहे हो, दुबले पतले हो, बहुत दूर से ढो रहे हो, कई एक आक्षेप कर रहे थे। वो आक्षेप बहुत किए लेकिन जट भरत जी पर आक्षेप का कोई असर नहीं हुआ। थोड़ा विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति का गर्दन कटने वाला था, देवी जी के यहां पहले कुछ दस्यु समुदाय उनको बलि देने के लिए ले गया था, उनको टिक करके पूज करके खिला पिला करके एकदम तलवार चलाने वाला था, उस समय भी उनको कोई विक्रिया नहीं थी, वे एकदम स्थिर थे। वो उस स्थिति में जिसको कोई भय नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, तो ये दो चार बात सुनने से उसको उद्वेग आएगा। तो उनके मन में कोई उद्वेग नहीं था, लेकिन जब ये राजा बहुत बोलने लगा तो ये सोचे कि अच्छा अपने को ज्ञानी बन रहा है तो ज्ञान दे करके ही इस पर कृपा करनी चाहिए। जब अपने को ज्ञानी मान रहा है तो इसको ज्ञान देना चाहिए। तो उस पर कृपा करने के दृष्टि से ही वे कहने लगे कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और दंड देने की बात कह रहे हैं, चिकित्सा करने की बात करें तो हमारी क्या चिकित्सा करेंगे। पहले तो आक्षेप किया, फिर भी जट भरत जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत कठोर बोला, दे दूंगा दवा तुमको, एकदम ठीक हो जाओगे। अब यह सुन करके जट भरत जी कहे कि हमको क्या दवा देंगे, हम रोगी नहीं है। स्वसंस्थाम गता से जो बिल्कुल व्यक्ति ठीक है, अब उस पर इंजेक्शन डाले जाए तो उसे क्या फायदा होगा। अरे कोई रोग हो तो इंजेक्शन दीजिए तो ठीक है, ये तो फालतू का काम होगा ना। उदाहरण दे रहे हैं, अरे गेहूं ले जाकर के पीसेंगे तो कुछ फायदा होगा, आटा ले जाकर के पिसवाइए मिल में तो उससे क्या फायदा होगा। कोई स्त्री है गेहूं पीसे तो आटा मिलेगा रोटी बनाएगी, अब आटा को पीसते रहे तो उसे तो उसके शरीर में केवल दर्द ही होगा, क्या लाभ होगा। और खास करके यह बात बोले सुसंस्थान गतस्य, अरे जो अपने स्वरूप में स्थित है उसके क्या चिकित्सा करेंगे। जब ऐसे कई एक बात बोले आप सुने तब इसका प्रभाव रहु गण पर क्या हुआ, इसका कह रहे हैं सचापी जब इस बात को सुने तो रहु गण भी उनका परिचय दे रहे हैं कि सिंधु सौवीर पति तत्व जिज्ञासायाम सम्यक श्रद्धया कृताधिकार। वहां सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि उपासित वृद्धोपि, राजा रहुगण बहुत बहुत ज्ञानी पुरुषों का संग किए थे और इनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ थी, केवल निसर्ग पर विजय नहीं था, स्वभाव पर विजय नहीं था, स्वभाव बस क्रोध उत्पन्न हो गया और क्या क्या बोल गए। कह रहे हैं कि सम्यक श्रद्धयाधिकृताधिकार, रहु गण बहुत ज्ञानी पुरुषों का संग किए हैं और सम्यक श्रद्धया अधिकृत अधिकार, ये शास्त्र श्रवण के अधिकारी बन चुके हैं। कैसे अधिकारी हैं, अधिकृत अधिकार, अधिकार ये प्राप्त कर लिए हैं। कैसे, सम्यक श्रद्धया, क्योंकि हृदय में इनकी श्रद्धा है, श्रद्धा का ही फल है कि ये कपिलाश्रम जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे थे, एकदम ये पाकिस्तान साइड से पश्चिम से पूरब के तरफ जा रहे हैं सत्संग के लिए ही, और कह रहे हैं कि उसके योग्यता उनमें सम्यक श्रद्धया, वे भली भांति से श्रद्धा उनके हृदय में है। भली भांति से श्रद्धा का क्या अर्थ है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे हैं, वे बहुत हिंसक प्रवृत्ति के नहीं है, तो स्वभाव बस क्रोध आ गया कि सम्यक श्रद्धयाधिकृताधिकार, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे हैं और इस दृष्टि से कह रहे हैं कि उनका सम्यक श्रद्धा है। जब उनके वचन को सुने तो तुरंत वे पालकी से उतर गए। उस वचन के विषय में कह रहे हैं तद हृदय ग्रंथ विमोचनम और बहुजोग ग्रंथ सम्मतम। जट भरत जी जो बात बोल रहे हैं तो उसके दो विशेषता दे रहे हैं, बहुजोग ग्रंथ सम्मतम, जो वचन था ग्रंथों में बहुत बहुत शास्त्रों में जिस बात की चर्चा है, जिसका उपदेश है, तो उसके द्वारा वो समर्थित था। शास्त्र मनुष्य के हित की बात करते हैं और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शास्त्रे स्वीयानि व सुनिश्चितो निर्णाम क्षेमस्य सद्यक विमशेष हेतु। जितने भी शास्त्र हैं उनमें खूब विचार किया गया है, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, प्राणी का कल्याण कैसे होगा, और खूब विचार करके उपाय को निर्धारित किया गया। वो उपाय क्या, असंग आत्म व्यतिरिक्त, उपाय केवल एक निश्चित किया गया है कि जो अनात्म पदार्थ है, आत्मा से भिन्न है, आत्म व्यतिरिक्त मतलब जो द्वितीय चीज है, देह गेह है, इसमें असंग, और आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे चया, और आत्मस्वरूप भगवान में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो यही मनुष्य के कल्याण का विचारित साधन है। शास्त्र विचार करके इसी निर्णय पर पहुंचे हैं, मनुष्य का हित कैसे होगा कि देह के नहीं, आत्मा के से भिन्न जो देह गेह है इसमें अनासक्ति हो जाए और भगवान में आसक्ति हो जाए। और जट भरत जी जो वचन बोल रहे हैं तो आसक्ति को दूर करने वाला है। इस अर्थ में कह रहे हैं कि बहुजोग ग्रंथ सम्मतम, यह बहुत बहुत शास्त्रों द्वारा समर्थित वचन था, और तद हृदय ग्रंथ विमोचनम, और उस वाणी का प्रभाव ऐसा हो रहा था कि उनका जो देहात्म बुद्धि है, जो देह और आत्मा की ग्रंथि है, तो वह खोलने वाला था, देह के प्रति आसक्ति को समाप्त करने वाला था। और जब इस वचन को सुने तो इसका प्रभाव आ गया, क्योंकि ये श्रद्धालु थे। कभी कभी हम लोग उपदेश सुनते हैं लेकिन शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, वक्ता में श्रद्धा नहीं है, तो उसका प्रभाव नहीं आ पाता है। और जट भरत जी प्रवचन कर रहे हैं तो प्रवचन की विशेषता है कि ये शास्त्र सम्मत है, वैराग्य उत्पन्न करने वाला, हृदय ग्रंथि को खोलने वाला है। और रहुगण भी श्रद्धालु व्यक्ति है, तो इसका प्रभाव आया और तुरंत रहुगण का अभिमान समाप्त हो गया। मैं राजा हूं, यह जो अभिमान था यह समाप्त हो गया। त्वरया बहुत तेजी से पालकी से उतरे, त्वरया कह रहे बहुत तेजी से, देर नहीं किए, और जट भरत जी के चरणों में गिर करके अपने अपराध का क्षमा याचना करने लगे, अपराध को क्षमा कराते हुए और बोलने लगे। तो बहुत बहुत बात बोले हैं, उसको हम लोग आगे के श्लोकों में सुनेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है विगतस्मय, उनका जो अभिमान था वह समाप्त हो गया और तुरंत क्षमा याचना करने लगे। हम लोगों की जो स्थिति है तो हम लोग अनुभव करते हैं कि कई एक चीज हम लोगों के स्वभाव बस हो जाता है, कई एक भूल स्वभाव बस कर देते हैं, किसी से व्यवहार है वो तो अपने स्थिति में रहते हैं, सामान्य स्थिति में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वभाव बस किसी को कठोर बोल देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं, बाद में पता भी चलता है कि गलती कर दिए, लेकिन अब क्षमा याचना तो नहीं करते हैं, मन में सोच लेते हैं लेकिन क्षमा याचना नहीं करते हैं। और क्षमा याचना करने के बाद तो दूर है, अब बहुत स्थिति में ऐसा होता है कि गलती कर चुके हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अब उस गलती को ढांकने के फेरा में पड़ते हैं, अब ऐसी ऐसी बात बोलने लगते हैं कि हमारे गलती का पता ना चले। अब यही हम लोगों का व्यवहार रहुगण से भिन्न हो रहा है। रहुगण स्वभाव बस कठोर वचन बोल दिए, लेकिन जो ही उनको अनुभव हुआ कि हम गलती कर दिए तो तुरंत क्षमा याचना कर रहे हैं। ये सीखना चाहिए, ये कुछ गलती हो जाए तो क्षमा याचना करना चाहिए, आप गलती को ढकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम एक जगह पढ़े कि जो कभी न गलती करे उसको भगवान कहते हैं, कभी गलती न करे उसको भगवान कहते हैं, और गलती करके सुधर जाए उसको इंसान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसको शैतान कहते हैं। हमको बहुत अच्छी बात लगी, अरे भाई हम लोग तो भगवान हैं नहीं, वो गलती हो ही जाती है, वो कह रहे कि जो गलती ना करे उसको भगवान कहते हैं, गलती करके सुधर जाए तो उसको इंसान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसको शैतान कहते हैं। रहुगण से गलती हो गई लेकिन तुरंत वे क्षमा की याचना करने लगे, उनके चरण में गिर गए। और यद्यपि रहुगण कठोर वचन बोले थे और जट भरत जी भी बहुत कठोर वचन बोले थे, जब भरत जी कम कठोर वचन नहीं बोले, अकोविद अकोविद बाद बाद, अरे बहुत फिलासफी झाड़ रहे हो मूर्ख। एकदम बोल तो रहे हो विद्वानों जैसा, लेकिन हो एकदम मूर्ख। जैसे अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं, तो वैसे ही जट भरत जी भी बोले, और दोनों दृष्टि से। एक फिलासफी झाड़ रहे हो, और जो विद्वान होते हैं तत्व विचार के समय ऐसा नहीं बोलते, और व्यवहार के दृष्टि से भी तुमको अभिमान है कि राजा हूं। अरे राजा के हृदय में दया होनी चाहिए, क्या कर रहे हो, ये बेगार में लोगों को जोत रहे हो, तुम राजा हो, राजा होने लायक हो। तो दोनों तरफ से उनको डांटते हैं, तत्व दृष्टि से भी और व्यवहार के दृष्टि से भी। लेकिन अब रहुगण का अभिमान तो खत्म हो गया है, तो जट भरत जी के वचन का बहुत आस्वादन के उनको बहुत अच्छा लगा। यद्यपि वे डांट रहे हैं, लेकिन डांटना सदैव बुरा ही नहीं होता है। कभी कभी तो डांटने को या भर्त्सना करने को, निंदा करने को बहुत अच्छा माना गया है। जैसे एक बार की घटना है, सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे और चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करते थे। सनातन गोस्वामी के शरीर में खुजली हो गया था और उससे रस निकलता था। वे नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु हमारे इस अधम शरीर का स्पर्श करें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बार बार उनका आलिंगन करते थे और उनको बहुत दुख लग रहा था। अब एक दिन की बात है, जगदानंद पंडित के साथ वे बैठे और उनसे कहने लगे कि हित लागी आईला भैला विपरीते, मैं तो अपने हित के लिए जगन्नाथपुरी में आया, लेकिन यहाँ तो उल्टी स्थिति है, कि करी ले हित है नारी निर्धारित, अब हम क्या करें कि हमारा हित हो, इसका मैं निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ। पंडित कहे तुम्हार वास योग्य वृंदावन, रथ यात्रा देखी तहाँ कर गमन। जगदानंद पंडित कहे यार हित तो इसी में है कि आप वृंदावन चले जाइए, क्योंकि आपके लिए वृंदावन ही रहने लायक है। रथ यात्रा देखी तहाँ कर गमन, यहाँ आए हैं चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई, रथ यात्रा तक रुक जाइए, जगन्नाथ जी का भी दर्शन हो जाएगा और इसके बाद वृंदावन चले जाए। और चैतन्य महाप्रभु भी आप दोनों भाई को तो यही आज्ञा दिए हैं कि आप लोग वृंदावन में जाकर के रहिए, वृंदावन वैसतः सर्व सुख पाइए, आप वृंदावन में रहेंगे तो वहीं सुखी रहेंगे। जे कार्य आईला प्रभु देखिला चरण, आप जगन्नाथपुरी में आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मिल लिए, और थोड़ा सा रुक जाएंगे एक महीना, तो रथे जगन्नाथ देखी कर गमन, रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी का भी दर्शन हो जाएगा, इसके बाद आप वृंदावन चले जाइए। सनातन कहे भाल कैला उपदेश, ताहा जब से ही अमर प्रभु दत्त देश। जब ऐसे जगदानंद कहे तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु तो हमारे लिए वृंदावन रहने के लिए निर्धारित किए हैं, तो हम वहीं चले जाएंगे। ऐसा निश्चय कर लिए। फिर जब चैतन्य महाप्रभु मिले, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए, चैतन्य महाप्रभु फिर दौड़ करके पकड़ करके जबरदस्ती उनका आलिंगन करने लगे, तो सनातन गोस्वामी कहने लगे विभत्स स्पर्ते ना कर घृणा लेस, यही अपराधे मोर हवे सर्वनाश। हम तो शरीर बिल्कुल विभत्स है, बहुत हे है, कुत्सित है, और इसका आप स्पर्श कर रहे हैं तो इससे तो हमारा बहुत भारी अमंगल होगा। हम तो यही विचार कर रहे हैं कि यहाँ रहने में, जगन्नाथपुरी रहने में हमारा मंगल नहीं है, आप आज्ञा दीजिए हम वृंदावन चले जाए। और कहे कि जगदानंद पंडित भी यही बात कहे, कि तुम वृंदावन चले जाओ। जब इतना चैतन्य महाप्रभु सुने तब तो जगदानंद की भर्त्सना करने लगे। कालिकार बटुआ जगा ऐसे गर्वी, अरे वो ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है नया, और उस पर इतना घमंड हो गया, तुम्हा के उपदेश करते लागिल, तुमको उपदेश देने लगा। अरे तुम तो व्यवहार में और शास्त्र में दोनों तरफ से उसके गुरु हो, और तुम आपको उपदेश दे रहा है, अपना वैल्यू नहीं समझ रहा है। अरे आपकी स्थिति है कि आप तो हमको भी उपदेश देते हैं, आप हमको उपदेश देने वाले, हमको सलाह देने वाले हैं, और आपको जगदानंद सलाह दे रहा है, अपने स्थिति को नहीं समझ रहा है। उसका बहुत घमंड बढ़ गया है। ऐसे जब जगदानंद की भर्त्सना करने लगे तब सनातन गोस्वामी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। सुनी पाए धरि सनातन ने प्रभु के कही ल जगदानंद सौभाग्य आजी से जानी ल। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए सनातन गोस्वामी और उनसे कहने लगे कि आज मैं समझ गया कि जगदानंद कितना सौभाग्यशाली है। अपन अर दौभाग्य र आजी है ल ज्ञान, जगते नहीं जगदानंद सम भाग्यवान। हमको आज पता चल रहा है कि हम कितना हतभागी हैं और जगदानंद कितने बड़भागी हैं। और जगदानंद को तो डांट का, भर्त्सना का, सुधा का रस पिला रहे हैं, उसको अमृत पिला रहे हैं, और हमारी स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये तो नीम के रस के समान तीखा है। और मोये पियाऊ गौरव स्तुति निम्न निसिंदा सारे, हमको तो नीम या लिसोड़ा का रस पिला रहे हैं। और आज हम समझ गए कि कितनी आत्मीयता है जगदानंद के साथ। और सनातन गोस्वामी अपने भाग्य पर क्षोभ प्रकट कर रहे हैं कि इतना दिन हो गया और फिर भी हमारे प्रति आपकी आत्मबुद्धि नहीं हुई। और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु में कोई दोष नहीं देख रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है, हमारा ऐसा प्रबल दुर्भाग्य है कि इतना दिन बीतने के बाद भी आप में आत्मीयता बुद्धि नहीं हुई। और सनातन गोस्वामी स्पष्ट यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि जिसकी भर्त्सना कर रहे हैं, जिसको डांट रहे हैं, तो वह आत्मीय है। वो कभी कभी व्यक्ति आत्मीयता बस भी किसी को डांटता है। वो यहाँ जट भरत जी रहोगण पर डांट लगाए, कठोर वचन बोले, तो आत्मीयता से प्रभावित होकर के उनके हृदय में कोई उद्वेग नहीं था, उद्वेग का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वे तो देहाभिमान से ऊपर हैं। वो आत्मीयता बस बहुत बहुत कठोर वचन भी बोले, लेकिन उस वचन का कैसा असर हो रहा है रहुगण पर वे खुद व्यक्त किए हैं। वे कह रहे हैं ज्वरा मयार्तस्य यथा औषधम सत्, यानी कि कोई व्यक्ति बुखार से खूब तप्त है, खूब तेज बुखार लगी है, कष्ट उसको हो रहा है, और खूब पोटेंट औषधि उसको दे दिया जाए, और जैसे उस औषधि से वो शांति उत्पन्न अनुभव करता है, या जैसे जून जुलाई का दिन है, खूब हौल है, खूब गर्मी है, और उस व्यक्ति को ठंडा बर्फ युक्त गंगा जी का पानी मिल जाए, और उस समय जैसे उस शीतलता अनुभव करता है, तो उसी प्रकार हमारा जो इस कुत्सित शरीर में अभिमान है, तो इससे हमारी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, तो आपका जो वचन है वो तो हमको औषधि के समान और अमृत के समान लग रहा है। कुदेह माना ही विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन वचस्ते मृतम औषधम, यानी कि हमारा दृष्टि नष्ट हो चुकी है। क्यों दृष्टि नष्ट हो चुकी है? क्योंकि ये कुदेह रूप अभिमान रूप सर्व हमको दंशित कर दिया है। एक लोक प्रसिद्ध घटना है और कोई झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ये जब कोई बहुत विषैला सांप किसी को काट देता है तो उसकी दृष्टि नष्ट होने लगती है। ये एकदम सत्य घटना, अभी एक साल पहले की बात है। एक भक्त को एक सर्प काट दिया, वो सर्प है को पता नहीं चल रहा था कि वो काटा है नहीं काटा है, बोले छोटा मोटा कुछ उपचार किए और किसी गुनी के पास गए तो ऐसे कह दिया कि सांप नहीं काटा है। तो ये लोग घर आ गए, लेकिन थोड़े देर के बाद 5-6 घंटे के बाद वो भक्त अनुभव करने लगा कि हमारे आंख के सामने अंधियारी छा रहा है, हमारी दृष्टि समाप्त हो रही है। तब उसको ले करके लोग गए अच्छे गुनी के पास, वो झारा कहा कि बहुत स्थिति बिगड़ चुकी है, आप लोग अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। तो यद्यपि भक्त का जीवन बच गया लेकिन बहुत पैसा लगा। हम यह कह रहे हैं कि जब सांप काट देता है तो दृष्टि समाप्त हो जाती है, दृष्टि कमजोर हो जाती है। वो रहुगण कह रहे हैं कि जो अभिमान है देह में कि मैं राजा हूं, तो यह सांप के समान है, विवेक नष्ट हो गया है। लेकिन आपका जो वचन है तो वो अमृत औषध है। अमृत औषध का कहने का अर्थ है कि रोग को ठीक कर रहा है, हमारे अभिमान को दूर कर रहा है, और ये अमृत है, परम सुस्वादु है। वो भगवान की कथा की विशेषता है कि रोग को तो ठीक करता है, औषधि जरूर है लेकिन कड़वा नहीं है। कोई कोई औषधि है कि रोग को तो ठीक करता है लेकिन खाने में बहुत कड़वा लगता है। लेकिन जो अपवर्ग वचन है, मोक्षदायी वचन है, तो इसका स्वभाव यह कि रोग को भी ठीक करता है और कान और हृदय को भी अच्छा लगता है, यह परम सुस्वादु है। और रहोगण जड भरत के वचनों का अभिनंदन किए हैं कि आपके वचन सुन करके हम बहुत शांति अनुभव कर रहे हैं, हमारा अभिमान दूर हो रहा है, हृदय शीतल हो रहा है। और दो उदाहरण दिए हैं कि जैसे कोई बुखार से तप्त है और कोई अच्छा औषधि उसको मिल जाए तो शीतलता अनुभव करता है, जैसे कोई बहुत हौल गर्मी से तप्त है और ठंडा पानी मिल जाए वो शीतलता अनुभव करता है, वैसे ही आपके वचन से हमको शीतलता अनुभव हो रही है। तो इस प्रकार उनके वचन का बहुत अभिनंदन किए। तो क्या क्या घटना हुई इसको हम लोग आगे के दिनों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।